नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा। भारतीय ध्वज वाला पोत 15,400 टन एलपीजी लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पहुंचा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद और रखरखाव के लिए अमेरिका के अवर सचिव माइकल पी डफी से मुलाकात की। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण पदक जीते और आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। असम में मतदान शाम 5 बजे तक और केरलम तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। असम में दिन में 1 बजे तक 59.62% मतदान की खबर है। और जानकारी के लिए बात करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मतदान की क्या स्थिति है?
देखिए, असम में अब तक किसी भी प्रकार की मेजर अप्रिय घटनाओं की सूचना तो है नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब है, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं का उत्साह बना हुआ है। दोपहर 1 बजे तक का अगर मतदान प्रतिशत देखा जाए तो 59.63% दर्ज किया गया है। सबसे अधिक मतदान साउथ सालमारा मानकासर डिस्ट्रिक्ट से दर्ज हुआ है, वहाँ अराउंड 66% मतदान दर्ज की गई है। और ग्वारपला डिस्ट्रिक्ट दूसरे नंबर पे आती है, जहाँ पर 65.79% दर्ज की है। और दरांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो थर्ड में आता है, जैसे 65.2% वहाँ पे दर्ज की है। कामरूप मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट सबसे कम दर्ज की है, 49.47%। कुल मिलाकर राज्य में अब तक मतदान का रुझान काफी उत्साहजनक है। तो अगर हम लोग इसी ट्रेंड को मेंटेन करते रहेंगे मतदान, तो बाय द एंड ऑफ दिस पोलिंग इट विल बी ओवर 82% बैक्टीरियम।
जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। केरलम में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद मतदान प्रतिशत 16.27% तक पहुंच गया। दोपहर 1 बजे तक 41.16% मतदान की खबर है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर मतदान शुरू होते ही अपना वोट डालने वाले पहले मतदाताओं में शामिल थे। तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष राज्यभर में मतदान की प्रगति पर कड़ी नजर रख रहा है। सभी 30,095 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और 2,040 संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक कुल 56.7% मतदान दर्ज किया गया है। वहां पुदुचेरी में 37.08% और कराईकल में 36.96% के साथ सर्वाधिक वोट डाले गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर तिरुभुवानी में सबसे अधिक 62.35% मतदान हुआ, जबकि माहे में अब तक सबसे कम 45.39% मतदान हुआ है। पुदुचेरी में 3 जगहों पर बनाए गए हेरिटेज मतदान केंद्र अपनी पारंपरिक बनावट और तमिल संस्कृति के प्रतिबिंब के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वर्ष 2021 में पुदुचेरी में 82.2% मतदान हुआ था। मौजूदा रुझान को देखते हुए चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार मतदान 90% से अधिक हो सकता है। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले की 28वीं कोरिडांग विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सभी 30 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 57% से अधिक मतदान की खबर है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज शाम को जारी की जाएगी। अब तक कुल 5,024 नामांकन स्वीकार किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मतदान में 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है और चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जिसमें AIADMK के नेतृत्व वाला NDA, DMK के नेतृत्व वाला धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन और अभिनेता विजय के नेतृत्व वाला तमिलगा वेत्री कजगम सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार चुनावी भाषणों के अलावा सोशल मीडिया भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। वहां 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। तमिलनाडु में सभी 7599 नामांकनों में से 524 नामांकन वैध पाए गए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का भी आज आखिरी दिन है। सभी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वोटों की गिनती 4 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने पर किसानों और मछुआरों के कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। हल्दिया में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सरकार बनाती है तो धान, आलू और पान की खेती से जुड़े किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आसनसोल में चुनावी सभा कर रहे हैं। वे सूरी में भी जनसभा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी उत्तर 24 परगना जिले में मीना खान और अन्य जगहों पर रैली करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा। एक वीडियो में समाचार पत्रों में दिए गए अपने विशेष आलेख का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने के लिए 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया गया है।
एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूँ, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव तथा आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान के साथ आयोजित हों।
हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए।
नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित विमला ने महिला आरक्षण विधेयक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर प्रयास किए हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लिबिया लोबो सरदेसाई ने कहा कि ये पहल निश्चित रूप से महिलाओं को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। मीडिया से बातचीत में सुश्री सरदेसाई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पहल में 27 वर्ष लग गए और ये अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ियां इससे लाभान्वित होंगी। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 45 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है। सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन सम्मेलन का उद्घाटन गोवा में किया। ये 2 दिवसीय क्षेत्रीय संसदीय सम्मेलन की शुरुआत का प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
उद्घाटन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा विधानसभा अध्यक्ष गणेश गांवकर सहित पश्चिमी राज्यों के वरिष्ठ विधायक शामिल हुए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर संसदीय सहयोग को मजबूत करना और प्रमुख विकास मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। विचार विमर्श आज एक सत्र के साथ शुरू होगा, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में युवा विधायकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 10 अप्रैल को व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क जैसे क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी।
भारतीय ध्वज वाला एलपीजी पोत ग्रीन आशा आज मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पहुंचा। ये पोत 15,400 टन एलपीजी लेकर हुरमुस जलडमरू मध्य होते हुए आया है। पोत पर सवार सभी चालक दल के सदस्य और सामान सुरक्षित हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नवकार महामंत्र जैन धर्म के साथ साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए शांति और आध्यात्मिकता अपनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में संतों और भक्तों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत अनेक समुदायों और धर्मों का घर है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में पोषण पखवाड़ा के 8वें संस्करण का शुभारंभ करेंगी। पोषण पखवाड़ा का विषय है जीवन के पहले 6 वर्ष में मस्तिष्क का अधिकतम विकास। सेना के त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम के लाचेन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए हिमसेतु अभियान शुरू किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर्प्स ने उत्तरी सिक्किम के लाचेन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। उत्तरी सिक्किम में लाचेन और चुंगथांग के बीच भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क बाधित हो गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हुआ है। पूर्वी कमांड के अंतर्गत त्रिशक्ति कोर्प्स ने संपर्क बहाल करने और फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बावजूद सेना के जवानों ने महत्वपूर्ण दौड़ों को खोलकर वैकल्पिक मार्ग सक्रिय किए हैं, ताकि निकासी कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। आकाशवाणी समाचार गांतोक से मैनाक चैटर्जी।
सरकार ने पाकिस्तानी वेबसाइटों द्वारा फैलाई जा रही उस खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गुजरात स्थित भारतीय वायुसेना के नालिया एयरबेस ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर हुए इसराइली हमले में इसराइल जेट विमानों को ईंधन भरने और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है। इकाई ने बताया कि प्रचार जानबूझकर फैलाई गई भ्रामक जानकारी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना और तनाव बढ़ाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अमेरिका के वाशिंगटन में रक्षा खरीद और रखरखाव के लिए अमेरिका के अवर सचिव माइकल पी डफी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक का उद्देश्य भारत और अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाना है। इसमें सह उत्पादन, रखरखाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर अपना दबदबा कायम किया। मौजूदा विश्व चैंपियन मीनाक्षी हुडा ने मंगोलिया की नोमुंडारी एनख अमगलान को 5-0 से हराकर 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने ची यू जेन को सीधे सेटों में 21-16, 21-12 से हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि एच एस प्रणॉय चीन के वेंग हांग यांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा। भारतीय ध्वज वाला पोत ग्रीन आशा 15,400 टन एलपीजी लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पहुंचा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद और रखरखाव के लिए अमेरिका के अवर सचिव माइकल पी डफी से मुलाकात की। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण पदक जीते और आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।